ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्ये गौरचंद्राय राधिकाय इतराले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सदभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहपाकर्या गुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वं तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि न जीवामि प्रणाविना इति तं नयमां च कल तक हम लोग श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद से कृष्ण के अंतर ध्यान होने का अप्रकट लीला का वर्णन कर रहे थे। कल से कार्तिक व्रत आरंभ हो रहा है और गुरु जी का अप्रकट तिथि भी वीरा तिथि भी कल है शरद पूर्णिमा। तो उसका भी आज अधिवास दिवस है पूजा करेंगे। विशेष तरह से कार्तिक महीने का अधिष्ठात्री देवी राधिका जी हैं, कृष्ण लीला अधिकतर रूप रहे एक कार्तिक महीने में ही हुए। कृष्ण की दाम बंधन लीला इसी महीने में, बछड़े चराने का गोपाष्टमी गोपाष्टमी नंदगांव में मनाएंगे वहां हुई, और गोपाष्टमी गायों को लेकर के चराने गए कृष्ण तो नंदगांव से गोपाष्टमी हुई दूसरी। इसी महीने में अक्रूर मथुरा से वृंदावन में आए, कृष्ण बलदेव को ले गए। इसी महीने में इंद्र की पूजा बंद कर गोवर्धन की पूजा हुई और इंद्र ने भारी वर्षण इत्यादि किया और उनका अभिषेक भी इसी महीने में हुआ। कंस भी इसी समय में मारा गया, चारुण इत्यादि सब मारे गए। और इसी महीने में गोवर्धन महोत्सव गोवर्धन की पूजा अन्नकूट की पूजा कृष्ण ने करवाई। द्वितीया के दिन में रात्रि द्वितीया का भोजन भी संपन्न हुआ, महोत्सव उत्पन्न हुआ इसी महीने में प्रातिद्वितीया। उस दिन जो लोग जमुना में स्नान करेंगे जम उनको जातनाएं नहीं देंगे, उनको छोड़ देंगे और जमुना में स्नान करने से उनको भक्ति होगी। तृतीया से आरंभ कर नौमी तक 7 दिन गोवर्धन धारण किया, दसवीं को गोपानांग विस्मय बाहुल्यम। गोपन ने कहा ये साधारण नहीं है, भगवान का अंश है। नारायण के समय यह गर्गाचार्य ने ठीक कहा था, उनको विस्मय हुआ और नंद बाबा हर्ष करके उड़ा दिया। एकादशी के दिन में गोविंद का अभिषेक हुआ और द्वादशी को वरुण लोक गमन किए। इस तरह से ये सब लीलाएं कृष्ण ने कार्तिक महीने में की। रासलीला भी कार्तिक महीने में हुई। अरिष्टा शुरुआत और राधा कुंड श्याम कुंड का प्रकरण इसी महीने में हुआ। इस तरह से देखते हैं कि इस महीने का महत्व बहुत अधिक है। विशेष करके राधा जी ही यदि इस महीने की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो कहना ही क्या। इसलिए जो लोग कार्तिक महीने में आएंगे, ब्रजमंडल की परिक्रमा करेंगे, उन लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे, यदि हरि कथा भी ना हो तो हरि कथा वो वहां की वन भूमि वृक्ष और लताएं बोलेंगी और उनका ऐसे ही कृष्ण भक्ति होगी। इसलिए आज देश विदेश से सब प्रकार से बहुत से देशों के लोग आए हुए हैं। कष्ट होगा किंतु मान लेना पड़ेगा। इतने आदमियों की व्यवस्था साधारण नहीं है और तो लोगों ने व्यवस्था करा, हिंदी बंगाली रशिया उड़ीसा और स्पेनिश जर्मनी इंग्लिश डच, इतनी भाषाओं में बोलना भी बड़ा कठिन है। आई कैनॉट स्पीक, वी कैनॉट स्पीक सो मेनी लैंग्वेजेस हियर, बट ऑल हैव टू, विल हैव टू मैनेज एनी हाउ। बंगाली भक्तरा सब ऐसे छे, हमार धारणा छिलो ना ये बसर तो आसवे, मने करे छे आसवे ना, तो बंगाली भक्तरा बहु ऐसे छे। उन लोगों को भी हरि कथा बंगला में बोलना, बंगला में भी हरि कथा हो, उनकी असुविधा ना हो। तो कल गुरु जी का प्रकट तिथि है, कल सब लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आज भी कुछ भक्त लोग बोलेंगे। अपने अपने जीवन का संशोधन करने के लिए और भक्ति के लिए 15-15 मिनट सभी लोग बोले। पहले रसानंद ब्रह्मचारी ही याद मगर बट इंग्लिश शुड बी ट्रांसलेटेड। ना ना पहले ट्रांसलेशन इनका।
Okay.
fine, happy.
Until this, for the last 2 days, until yesterday, Srila Gaudiya was discussing the 11th chapter of Srimad Bhagavatam. But today is Aripas Tithi of Kartik Mas. That means the day before Kartik Mas. So, Gaudiya is talking to the 11th chapter for today, and Gaudiya is distributing the glories of Kartik Mas. Also, on the first day of Kartik, Aparam Gurudev, Nityananda Krishna Vishnu Pada Source Shivan, Bhakti Pandan Krishna Goswami Maharaj, he discovered his unmanifest pastimes. So it is the festival of his disappearance, separation festival, Virahatiki. So there's not enough time for all senior devotees to glorify him tomorrow, so we'll begin today, and senior devotees will glorify him. Give their short Pushpanjali. That will also see the Prami Gurudev from this evening, beginning with Pushpanjali and that will also continue tomorrow. So first of all, Srila Gurudev explained the glories of Kartik Mas. The Adishakti Devata, Devi, or predominating deity of the month of Kartik, is Srimati Radharani herself. In this month, many pastimes, very prominent, important pastimes of Krishna took place. For example, Dham Bandhan Leela, the pastime of Bandhya Shoda binding Shri Krishna, took place in this month. Also, Gopastami, when Krishna was 5 years old, grazing only calves. And then the next year, the second Gopastami, when Krishna for the first time went out to grazing cows from Dandagaon. So in this month, the Vrishvasis prepared to do Indra Puja. But Krishna checked it. He stopped them and instead he arranged for Govardhan Puja. And in this month, there was an Anukut Mahotsav. And after that, on Dritya, Ratri Dritya, the Vrishvasis, they took bath in Jamuna. Because it's the custom for brothers and sisters, they should take bath in Jamuna on Ratri Dritya, means Mother's Day. So then, from the Dritya to the Navami, for 7 days, Krishna lifted Viraj Govardhan. And then, on the Dasani, Vrishvasis met with Nanda Maharaj, because they were confused, how could a body lift Govardhan Hill? Nanda Maharaj pacified them, or my son is an ordinary boy. Then, that was just me that Akadasi, on Akadasi, Indraday came and did the Abhishek of Shri Krishna. In this month, on the first day of the following year, then Krishna performed Rasa Leela, Sharia Rasa Leela. During this month, Krishna also killed Arishtasur and manifested Shama Kund, and Radhika and Nasaki's manifested Radha Kund.
Yes, sir.
You were changing that, so you didn't hear. You mentioned about Akrura, but Akrura is coming Falgun, in the Ekadasi, Dwadasi. On Falgun Mas. Falgun Mas, huh?
Yeah. Kansa Kumara.
Yeah.
No. Oh, his father's name was Falguni or anything. Father name, Falguni. Falguni, his name. His father name was... But how it can be? Akruji din le aya Krishna ko dusre din mara. Dusre din. On the next day he came. Never. He is telling. Oh, here, 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 here. In this I told.
in this month of Kartik.
Oh, whose father is called Falguni? Akrura.
Himself Akrura is called Falguni.
So, in this month, Akrura came to Vrindavan and to Krishna to Mathura on Dwadashi day, but then the following day, Kamsa was killed. Some people have opinion this took place in Falguni. Buddha said that the Falguni is one name of Akrura. So, this month is, the glories of this month are so great. And so during this month, we'll do parikrama of all the forests of Vrindavan and hear Harikatha. And even the trees and the creepers of Vrindavan, they all tell Harikatha during this parikrama. Many problems, many difficulties will come. And because it's not an ordinary thing to arrange parikrama for so many people. But anyway, all devotees will have to adjust and be very humble and tolerant, and this way program will be successful. Now we hear about the glories of our Maha Guru name, Prabhu Padrasana Rabu.
Also, the disappearance day of my Guru Dev first day, Param Pujyapad, Prapujya Charan Siddhar Maharaj. Bhakti Pramod Puri Maharaj, Siddhar Maharaj, Swami Maharaj, and Bhakti Surup. Oh, so many Vaishnavas. They are standing, they are all standing in line for Karti.
Trivikram Maharaj.
Oh, Trivikram Maharaj also. In Kartik month?
Yes. Huh? Just after.
Swami Maharaj is here.
Just after Anukut.
Very bad. Yeah. 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 Guru Maharaj is Mahima.
Hamara jitne guru hai, Gauri Sankar, Maharaj Jagannath, Maharaj Bhagwan, Maharaj Bhagwan, प्रभुवाद की एक ही पृथ्वी में आशीष का नजर आ रही था सर्वत्र प्रचार वास्तव रूप में लड़का भी
भविष्यवाणी
को स्थापित करेंगी इसलिए जिस समय ये सारे पूर्वर्गो ने प्रभुवाद को बहुत
लेकिन अगर हम भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को अगर हम सप्तम गोस्वामी कहते हैं कोई अतिथि नहीं, क्योंकि महाप्रभु का जो जो आदेश को उन्होंने बहुत अच्छे तरह से उन्होंने महाप्रभु का आदेश को उन्होंने पालन किया। जैसे उनको आदेश में हर आचार्य का एक वैशिष्ट है, हर आचार्य का एक वैशिष्ट है। इसमें हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का जीवन में देखो विशेष विशेष वैशिष्ट देखने को मिलता है, विशेष विशेष वैशिष्ट है। अभी महाराज का मुखार विदेश मैंने जो सुना है थोड़ी सी उसको मैंने चर्च से चर्मन करने के लिए कोशिश करूंगा। महाप्रभु का जो पहला आदेश, महाप्रभु का जो गोस्वामी का प्रति जो आदेश है सिद्ध विग्रहों को प्रकाश करना। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उन्होंने जो विग्रहों को प्रकाश किया है हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए, महाप्रभु जो उनका पूज्य रस को देने के लिए आए, और हम लोग जो श्रीमती राधा रानी का पक्ष है, हम लोग पक्ष है, यह चीज को उन्होंने ये विग्रह के द्वारा ही उन्होंने स्थापित किया। हम लोग ये चीज को हम गौड़ी वैष्णव को दिखता नहीं, कोई नहीं दिखता है जो विग्रह को विशेष रूप से उन्होंने प्रकाश दे दिया है। इसलिए सारे गौड़ीय मठ में देखिएगा कृष्ण काले है, लेकिन हमारे गौड़ीय वेदांत समिति में कृष्ण सफेद है। इसलिए कोई कोई गुरु भाई उनको उपहास किया, लेकिन ये सब क्या कर दिया, ये सब सादा विग्रह सफेद विग्रह कम पैसा मिलता है और जो काला विग्रह था कीमती है, फिर तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ये सफेद विग्रह कम पैसा मिलता है इसलिए स्थापना कर दिया। इसलिए कुछ गुरु भाई ने उनको खराब कर दिया। इसलिए उन्होंने एक विनोद बिहारी पाष्टक को शास्त्र के आधार पर उन्होंने, इसलिए उनका अगर मेधा अगर तुम उनको देखना चाहते हो विनोद बिहारी पाष्टक को देखिए उनको कितने सूक्ष्म मेधा है और क्या तत्व दर्शन वो श्लोक का दर्शन दिया। अगर वो चीज को समझना तो महाराज इसको जो टीका दिया है वो तो अत्यंत अत्यंत ही गंभीर कर रहे हैं। अगर जो वो ग्रंथों को अध्ययन किया है उन लोगों को पता है कितने गंभीर विवेचना सुनी राधा चिंता निवेशन का श्री कृष्ण चरणों पर अंतर आधा आलिंग का विग्रह इसी विषय को उन्होंने करते हुए कहते गुरुपाद का तो विग्रह क्यों स्थापन करते हैं, कहते वो तो हर समय प्रेमानंद सुनी जब भक्ति विलोचन है ना संत सदैव हृदय सुनो कहते वो तो दिव्य हृदय में ग्रस्त करते हैं, लेकिन पुनः उनको ये विग्रह स्थापन करने का क्या जरूरत है, कहते इसलिए विग्रह स्थापन करके अपना हृदय में प्रेमानंद चक्षु को दर्शन अपना हृदय में जो दिव्य रूप का दर्शन करते हैं उसी रूप में ही स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं ऐसे कोई विग्रह की स्थापन करते नहीं, अपना हृदय में चीत हृदय में प्रतिफलित विग्रह को स्थापन करते हैं। कहते विग्रह का विशेष महत्व क्या है, कहते विशेष महत्व है यहाँ पर केवल राधा रानी की भाव की उन्नत उज्जवल रस की सर्वोत्मत स्थापना करते हैं। जैसे श्री कृष्णचंद्र कलयुग में हुए राधा रानी के जो तीन कारणों को लेकर के जो आए राधा या प्रणव महिमा की दर्शन जन अद्भुत जो तीन कारणों को लेकर के आए किसलिए आए राधा रानी की प्रेम की महिमा। इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने गौरा गौरे नहीं कहते राधा रानी को तो गोरी चाहिए लेकिन कृष्ण क्यों गोरे हैं, कृष्ण का कारण क्या गौरव होने का, कहते श्री कृष्ण चंद्र जब रास से कृष्ण अंतर्धान होकर के कृष्ण जब इमली तला में आते हैं इमली तला में आ करके कहते राधा रानी का चिंता करते 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 उनको भाव में इतने आविष्ट हो गए अपना शांति को भूल कर भूल गए और उसने राधा की शांति को हुए धारण ये गए। दूसरे कहते राधा को द्वारा आलिंगित होने पर कृष्ण अंदर अंतर कृष्ण भय गौरव अंदर कृष्ण लेकिन ऊपर क्या है कहते गौरव है। इसलिए कहते जो तीन विग्रह है उनका रंग जो एक ही है मतलब क्या एक उन्नत उज्जवल रस ही सर्वोत्तम है और जो तीनों को तीनों वो उन्नत उज्जवल रस को द्वारा श्रीमती राधा रानी के भाव को द्वारा संपूर्ण ये तीनों तीनों उसको द्वारा प्रकाश होता है। इसलिए उनको विशेष वस्तु मिली इसलिए उसको तो भक्ति के लिए बहुत समय एक श्लोक महाराज जी कैसे व्याख्या दिया है ये एक है। दूसरे उन्होंने जो है वेदांत संगीत को स्थापना किया और जितने सन्यासी का नाम उन्होंने वेदांत देना शुरू किया इसलिए उनको गुरु भाई भी सब प्रकाश से किया। आम व्यक्ति जानते हैं वेदांत सूत्रों को भर में शंकराचार्य का भाष्य है पहली भाष्य था और जितने भाष्य है तो मायावादी भाष्य है वो निराकार एक विषय से ब्रह्म को स्थापन करने वाले। इसलिए आम व्यक्ति जानते हैं जो वेदांत ग्रंथ वो वेदांत जगत मायावादी होगा लेकिन देखो ये आचार्य का वैशिष्ट्य लेकिन उन्होंने सभी का विभाग में जो एक एक चीज था एक नए नए सिद्धांत जो उन्होंने स्थापन किया, इसने संत का नाम वेदांत संत रख दिया, सहार सन्यासी का नाम वेदांत वेदांत रख दिया, इसलिए उनको गुरु भाई लोग अठस किए तो उन्होंने उसको भी स्थापन किया। वेदांत है, वेदांत कौन है? वेदांत का तात्पर्य होता है वेद का जो अंत व वेद का जो सार है। वेद का सार क्या है? वेद का सार है हमारे निगम तत्व तरुण गलितम फलम सुख मुखात अमृत दर्वसन। निगम मतलब वेद, कहते निगम वेद रूपी कल्प पृथ्वी का जो परिपक्व जो फटा हुआ फल क्या है? कहते श्रीमद भागवत है। इसलिए सर्व वेदांत सार भी श्रीमद भागवत विषय तथा तीर्थ नांदक साथ रखी हुई। इसलिए जो भागवत कहते आत्मा या ब्रह्म सूत्र, ये ब्रह्म सूत्र का जो अर्थ कहते श्रीमद भागवत है। और भागवत का सार क्या है? भागवत का सार क्या है? भागवत जो उसमें जो दशम स्तर है भगवान का उद्धार दिख रहे, उनको जो हंसी है वो क्या है? उसमें जो श्रीमद भागवत ग्रंथ में जो गोपी गीत है, प्रणय गीत है, जुगल गीत है, जो भ्रमर गीत है, जो जितने गीत है, ये सारे को सारे ये भागवत का निचोड़ क्या है? भागवत का निचोड़ है वो विप्रेत है, जिसको उद्धव जी ब्रज में आकर के ये चीज को स्थापन करते हैं। इसलिए उसको सामने वही भाषता है वेदांत नाम लेते हैं, जो वास्तव रूप में वेदांत का तात्पर्य जानते हैं। इसलिए यह चीज को उन्होंने स्थापन किया और उनको जो महाप्रभु का जो आदेश है उसमें था धाम को प्रकाश करना। इन्होंने प्रभुपाद को जैसे उन्होंने उन्होंने मदद किया उनको तो मायापुर को जिसको मियापुर बना दिए थे, जहाँ पर मुसलमान का कब्रगाह था, जिसको प्रभुपाद जो बड़े बड़े शिष्यों की तरह जो काम नहीं हुआ, तथा हमारे भक्ति प्रज्ञा के महाराज एक रात में ही कितने बुद्धिमान थे, एक रात में संपूर्ण उन्होंने परिवर्तन कर दिया और एक रात का रात ही यही से बदला दिया, दूसरे दूसरे पहचान नहीं पाए स्थान क्या था। विशेष उनका अवदान और ग्रंथ प्रणय में जो महापुर आदेश था उनको भक्ति ग्रंथ में ये भी एक अनुभव है, एक दीप है। हमारे गौड़ी मठ में जो मंगला थी जय जय राधा कृष्ण जी को राधे लेकिन उन्होंने हमारे कृष्ण भावनामृत और हमारे गोविंद लीलामृत और तीन ग्रंथ से लेकर के उन्होंने जो सरस युक्त और रसमय युक्त और वास्तव रूप में राधा कृष्ण कैसे विश्राम करते हैं, उसी समय क्या स्थिति है, कैसे गोपी मंजरिया उनका आदत उतारते हैं, ये एक दीप दिया और उसमें जो तुलसी परिक्रमा दिया ये एक विशेष वस्तु है। इसलिए हम लोग नमर नमर मैया नमर नारायण, हाँ मैया सब उसमें तो चंद्र सकेगा, लेकिन हमारे महाप्रभु जिस धारा में आए हैं ये धारा कोई मैया शब्द है नहीं, हम तो रामायण का भक्तदासी बनने चाहते हैं, इसमें मैया कहाँ है। इसलिए उन्होंने वो चीज को उन्होंने तुलसी कीर्तन का एक अनूठा दीप को उन्होंने विशेष रूप में तुलसी कीर्तन दिया और उसने एक मायावादी ग्रंथ लिखा। जिन लोगों को मायावादी सुना था कुछ दिन पहले तो ये ग्रंथ और किस तरह से उसको केवल एक लेख हरिद्वार में मायावादी को पास में पहुंच गया, एक लेख सुनकर इतना भड़क गया आदमी, इतने दुखी हो गया, उनको जो केवल आर्टिकल का केवल एक वर्ष काम से दिया था उन्होंने क्रोधित होकर के बड़े उल्टा सीधा यहाँ पर पत्र लिखा, इतना जोर जबरदस्त रूप से उन्होंने मायावादी को खंडन किया। इसलिए महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है, इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान में सब गोस्वामी महाराज ने जैसे उस चीज को उन्होंने पूरा किया, इसने एक आचार्य की एक विशेष आचार जल को उद्घाटन किया। इसलिए कथक पहले उनको गिरोभाव दी है, आराम का उनका गिरोभाव दे दिए, इसलिए वो जैसे प्रभु का मनोभिष्ट तथा श्री महाप्रभु का मनोभिष्ट और उनको मनोभिष्ट जैसे हमारे महाराज ने पूरी किया है, प्रार्थना करते हैं हम लोग आशीर्वाद करें इस नाम जीवन में जैसे उनको सेवा की बहुत ही ज्यादा हम स्पर्श कर पाएंगे हमारे जीवन सार्थक हो जाएंगे।
थोड़े से शब्दों में सागर को गागर में भरा रसा में बुझूंगी, बहुत ही told so many things in brief, but whole life. You should glorify him and give your Pushpanjali. यहाँ पर बैठने की जगह नहीं हो रही. There is no place to sit here. So tomorrow after prasadam, you should all go within 4 p.m. and you will be hosted there. And their big place for class has been done. Here no place at all.
Oh, good day. We are Vishnu Thakur Thakur telling Kamsaha Falguna Krishna Akadasyam. Yeah. The Tikon.
Akrur Adi.
कृष्ण
एकादश इन
दिस फाल्गुन
फाल्गुन
नॉट फाल्गुन
Krishna Ekadasha. Though it is written, I will see. But it is very
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First of all, on this auspicious occasion, the day, night before Kartik, Vrat begins, the transcendental disappearance day of His Divine Grace Nityalila Pravishta Om Vishnu Pad Asto Karasata Shri Shivan Bhakti Pragyan Keshan Goswami Maharaj. I'm offering my humble Dandavat Pranams and Shuraka Pushpanjali at the lotus feet of my beloved Gurudev Nityalila Pravishta Om Vishnu Pad Asto Karasata Shri Shivan Esi Bhakti Vidanta Swami Maharaj Prabhupada. And to the lotus feet of my beloved Sikh Gurus, Om Vishnu Padvastu Tarasata Shri Shivan Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, and Nityalila Pravishta Om Vishnu Padvastu Tarasata Shri Shivan Bhakti Raksha Shri Nara Goswami Maharaj, and to all the assembled Vaishnavas and
Vaishnavas.
So as Srila Gurudev said, all the acharyas in our sampradaya, so many of them have chosen this transcendental month of Karti in order to attain their entrance into Nityalila. So we are so fortunate that on the very first day of Karti every year, we have this opportunity to hear about, chant about, and glorify the divine qualities of the most exalted Siddha Mahapurush Rupa Nuga Acharya Varja Srila Bhakti Pradyan Keshav Goswami Maharaj. So this divine personality who plays such an important role in the movements of Sri Chaitanya Mahaprabhu spreading throughout the length and breadth of this whole world, this whole jagat. His early life, his middle of his life, and the latter part of his life, all of them are so beautifully accounted in the wonderful biography which Srila Gurudev has written of his Guru Maharaj. And there, the beautiful qualities, extraordinary character, and divine activities of Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj have so wonderfully been presented. So we can drink a few drops of that nectar. I'm remembering from his biography. Srila Gurudev explains that from very early childhood, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj he showed the signs of such a great Siddha Mahapurush. And from his early childhood, extraordinary events took place. Just when he was born, he was so effulgent and beautiful, and all of the very exalted people of his village, they gave him the name Jonah, which is short for Jyotsna, and that means moonbeam, because he was so beautiful and effulgent, and his color so golden and wonderful. Even in the reading of his astrology chart, it showed all the signs of a great divine personality who would become a great acharya in this world, who would preach through the length and breadth of the world Shuddha Bhakti, and who would liberate the jiva souls from their endless suffering in the cycle of birth and death. And these symptoms were visible in him even from his childhood. One extraordinary event that took place in his early childhood was that one day his mother gave him oil body massage and put him out into the sun in the courtyard. And as he was lying there, suddenly a very large eagle came swooping down from the sky, and in his talons he picked up the child and flew up into the sky. We can hardly imagine what kind of terror would go through the heart of a mother if they saw their young baby being carried off into the sky like this. So everybody with great commotion was running here and there. And they were watching this eagle going. At some distance, the eagle came down from the sky and came over a pond. And there was like a basil bark, little shaped floating on the water. And the eagle very gently placed him down on this little boat. And then he flew away. And immediately all the ladies of the village and the men, they came forward and rescued the child, and the mother took the child into his arms. And at this time, they could understand that Krishna, Bhagavan, he had saved the life of this child because he has some extraordinary work to do within this world, how to benedict the jiva souls of this world. So very carefully, she took care of Vinod Bihari Brahmachari, that was his name in his early life, after he came to the lotus feet of Srila Prabhupada. So as he grew, he went through his education. But actually he was more interested in Sri Chaitanya Charitamrita, in Srimad Bhagavatam. And even when his school teachers would try to speak some verses of Chaitanya Charitamrita, and they would try to give some impersonal Mayavad interpretation, he would counter that. He would argue with them and he would defeat them, even as a young boy. And in this way, eventually he began to realize that he was not interested in these kinds of studies. At one stage, when he was in his middle teens, he had two aunts. And these two aunts, they had the connection of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And he associated with these two aunts in one year, in about 1915, they brought him to Sridhar Mayapur to observe the anniversary of Sri Chaitanya Mahaprabhu's divine appearance, Gaur Purnima. There, they were celebrating with Srila Prabhupada, and this was the first meeting of Sri Vinod Bihari with Srila Prabhupada. And there, at that time, they celebrated and heard Harikatha of all Chaitanya Leela and performed the parikrama of Navadvip Islands. And then at the end of this time period, Srila Prabhupada was sitting and he was telling that he has a desire. This was before the Gaudiya Math was actually beginning to be established. And he was now expressing his desire. He wanted to establish a temple on every single one of the nine islands of Navadvip. He wanted to establish preaching centers and temples all throughout the length and breadth of Bengal and all throughout India. He wanted to establish printing presses so that the transcendental message of Chaitanya Mahaprabhu and the books of Srila Bhaktivinoda Thakur and the previous acharyas could be disseminated far and wide. And in this way he was telling that this kind of work, he had this desire and this intention. And then at that time the aunt of Sri Vinod Bihari told, but Srila Prabhupada, here at Yogpeet in Mayapur, practically speaking, you don't even have enough Mat residents to ring the bells during the Kartik, during the Artik ceremony. So how will it be possible that all of these great dreams and great desires of yours can be fulfilled? And then at that time, even the very first meeting with Srila Prabhupada, he told Vinod Bihari, he will accomplish all of these things. So Srila Prabhupada, he told like this, and actually this became the fact. Because in course of time, he renounced his home life, Srila Vinod Bihari renounced his home life, and came and surrendered at the lotus feet of Srila Prabhupada, and began to live within the mat. And from the very beginning of Srila Prabhupada's preaching activities to bring the transcendental message of Chaitanya Mahaprabhu to the whole world, Srila Vinod Bihari was constantly assisting him as his most intimate servant. At that time, as his preaching activities expanded, Vinod Bihari Prabhu became like the mat commander and the person in charge of all the Gaudiya mats. He was so renowned by all the Vaishnavas in the Gaudiya mat. And Srila Sridhar Goswami Maharaj, my Sikshu Guru, he expressed once how he first met Vinod Bihari with Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. And this was later on in the mid-20s, around 1925, when all the preaching activities of the Gaudiya mat had become very, very high-powered. And they were attracting many thousands of people to come there. And during this Lord Purnima celebration festival, Srila Sridhar Maharaj came there, and he was observing all the activity going on. And then he noticed one sight. There was one tree, it was a jackfruit tree, and underneath this tree was sitting one young personality, young man, and he was dressed in white cloth, and he had his feet up on a table, and he was sitting on a chair, and he was kind of rocking back and forth with his eyes closed and deeply absorbed in some kind of contemplation. But Srila Sridhar Maharaj noticed that in front of him, so many brahmacharis and sannyasis in saffron cloth, they were coming, they were very, they were bowing with great respect, folded palms before him, and speaking some words, some of them paying dandava pranams, and then he would open his eyes and speak a few words to them, and then they would go away. And he was very astonished. Who is this young person clad in white? And these sannyasis and brahmacharis are coming and bowing down before him. And then someone told him, oh, this is Vinod Bihari Brahmachari Prabhu. He is the controller of all the Gaudiya mats and most intimate servant of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And from that day, Srila Sridhar Maharaj had very great respect for him and developed a very intimate relationship with him. So Srila Vinod Bihari Brahmachari, he did so many extraordinary activities in his service to Srila Prabhupada that he was given the title Kriti Ratna, which means one who can do the most great, wonderful activities very easily. And there are so many incidences which demonstrate how he was able to do such extraordinary activities of Guru Seva and Seva to Sri Dham Mayapur. One of these incidences is that the Samadhi of Srila Gaurikishore Das Babaji Maharaj, which was located on the opposite side, on the Navadvip side of the Ganga, it was in danger of being threatened by flood. And this flood was coming everywhere, as it does regularly in Mayapur Dham. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati instructed that he wanted his Guru Maharaj's Samadhi to be transferred from that side to Sri Dham Mayapur. So very boldly and with great ability, Sri Vinod Bihari Brahmachari, along with a few others, went to that side and began to excavate the Samadhi. And in a very amazing way, they excavated the entire Samadhi, all the ground below the earth, in one piece. And they were able to transfer it across the Ganga and to bring it on boat and to bring it directly to Sri Chaitanya Mat. And there, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada was waiting he himself, with his own hands, he dug the earth so that he could install his Guru Maharaj's Samadhi there on the banks of Radha Kund at Chaitanya Mat. So at that time, Sri Ganod Bihari Brahmachari performed this amazing feat. But there were some envious persons in the neighborhood, and they were trying to assert that this was an illegal activity. And they complained to the local governor of that time, who was from the British government. And he was brought to court. So in the courtroom, they were threatening to him. And the court judge, who was the British judge, he told him that according to our law, and the British law, English law, that this is an illegal activity, punishable by imprisonment, that you have transferred a tomb from one place to another. So this, what do you have to say? And very boldly, without any fear whatsoever, Sri Dinod Bihari Brahmachari, at that time, he declared, he said, we are residents of Bharat Bhumi. We are not following the Christian laws. We are following the eternal Vaishnav Dharma. And according to our Vaishnav Dharma, it is certainly okay and appropriate that when it is necessary in time of emergency, any samadhi or any tomb may be relocated from one place to another. And there are so many thousands of examples of this. And by his great boldness and courage, there was no problem, and then the court dismissed the case, and he won this court case. In this way, he performed so many activities of great courage, and there is one very extraordinary example, and many hundreds of others. I'm telling one. It was in a celebration of Gaur Purnima, Parikrama, which was organized by Srila Prabhupada with many, many thousands of Vaishnavas in about 1932 or something. And they were coming with a very great procession through the town of Navadvip Dam. And at that time, the preaching activities of Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati, were so powerful that many of the Smarta Brahmanas, many of the Sahajiyas, they considered that his preaching activities were a threat to their livelihood because they were engaged in so many ritualistic activities and receiving so much money and payment for all of their activities. And also, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was giving Brahmin initiation to those who were not born in the Brahmin caste. And in this way, they were considering that he was an enemy. So they conspired in a very evil way to try to disturb his parikrama and to try to cause physical harm directly to Srila Prabhupada and all of the pilgrims. So they made an arrangement that they hid on the rooftops in one area of Navadvip Dam. And as the procession came with so many thousands of Vaishnavas to this very place in the center of Navadvip city, and they had so many elephants there, and the deity of Mahaprabhu was there, and suddenly from the sky, all of these envious persons began to throw down so many rocks and so many pieces of glass, and it was showering from all directions. And at that moment, the first thought that would occur in the minds of everyone was how to save one's life, because otherwise one would be mortally injured. So all of these people, they were scattering here and there, running here and there. But Sri Vinod Bihari Brahmachari, he did not think of his own self. Immediately he thought, how can I protect Srila Prabhupada? And immediately he took him very forcefully into one doorway that was very nearby. Very quickly, he took him inside and closed the doorway. Now this happened to be the house of one favorable person. And when he was inside of the room, then Sri Vinod Bihari Brahmachari, he begged from Srila Prabhupada, now I want to protect you, O Gurudev. You please give me your cloth because they are trying to locate you. They want to cause harm to you. So I will take your sannyas dress and I will pose that I am you and you will take my white cloth. And in this way I will very safely arrange to transfer you secretly back to Mayapur for safety. And at that time, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he gave his sannyas vesh and he gave his danga in the hands of Sri Vinod Bihari Brahmachari. And he was very pleased by his self-sacrifice, that even his very life he would risk for his Guru Maharaj. So this incident is a very famous example of the absolute perfection of Guru Seva, which Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj executed. And during the time of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, all the Gaudiya Mutts were completely dependent upon his managerial expertise. Even Srila Prabhupada wanted to give him sannyas a number of times, But those other God brothers, they begged Srila Prabhupada, please don't give him sannyas, because if you send him away preaching, then who will manage? And all of your preaching activities will go down. So much dependent was Srila Prabhupada upon Sri Vinod Bihari Brahmachari. And after the disappearance of Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, we know that there's some history of a dark cloud coming over the Gaudiya Saraswat Sampradaya, that so many persons were deviating from the line of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, and there was so much disturbance, and gradually, all the preaching activities, all the patrikas, all the printing activities, and everything, even the parikramas, everything had ground to a halt. So at that time, with complete dedication in his heart to his Guru Maharaj, Sri Vinod Bihari Brahmachari Prabhu, along with a few other God brothers, they began the preaching activities again of the Sri Gaudiya Math by renting a house in Navadvip Dham, and later on in Calcutta, they established the Sri Gaudiya Vedanta Samiti. Our Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, when he was in his household life, he was one of the founding members of this Gaudiya Vedanta Samiti. And Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj at that time accepted the sannyas ashram from his godbrother Srila Bhakti Raksha Sridhar Maharaj, who was also involved with Gaudiya Vedanta Samiti. And in this way, with a combined mood, all the godbrothers again came together and they began to preach this message of Chaitanya Mahaprabhu all throughout Bengal, all throughout India, with the same fervor and the same energy during the time of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So the glorious activities of Srila Bhakti Prabhyam Keshav Goswami Maharaj, how he established the preaching mission of Srila Prabhupada, how he preached the message of Chaitanya Mahaprabhu, how he gave sannyas to our Guru Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, in this very room in Sri Keshavji Gaudiya Math, how he empowered his disciples, like our beloved Gurudev, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, to preach the length and breadth of this world. How he empowered Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada to preach this message throughout the world. So he is the actual Guru Seva of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. We are very proud to be in this line under his divine guidance and under the guidance of his beloved servitor, our beloved Gurudev, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj.
বাংলা আর হিন্দি আর তুমি একটু বলে দাও সংক্ষেপ যখন কাজে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন কর্মাবলম্বতা কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বতা
কর্মী আছেন, তাহার কর্ম জগতের কথা কর্মের কথা বলে থাকেন, বহু সমস্ত জ্ঞানী তাহার জ্ঞানের আড়ম্বরের কথা বলেন। আমরা তো হরি ভক্তজনে ভক্তজনে পাদত্রাণবাহী কিঙ্কর। এক সময় ছিল পরম গুরু মহারাজ, তিনি বলেন যে আমার মতো এই দুর্দান্ত ব্যক্তি কোথায় আমি পড়েছিলাম, এই মহামানব ছিল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী ঠাকুর, তিনি কেশা দর্শন করে আমাকে তাহার চরণের স্থান দিয়েছেন। ছিল প্রভুপাদ বলেই তিনি অজর নেতৃত্বে এই প্রকারে ছিল পরম গুরু মহারাজ, যিনি বাল্যকালে পূর্বাশ্রমে থাকাকালীন বৃদ্ধ অতিথি অথবা যাহারা গরিব দুঃখী দুস্থ এবং অসুস্থ রোগী তাদের প্রচুর মাত্রায় সেবা করতেন। এক সময় তাহার মা একদিন তাহাকে ধরেছেন, বিনোদ তুমি কোথায় গিয়েছিলে, এখন তোমাকে দেখতে পারি নাই পাই নাই, কোথায় তুমি ছিলে? তখন উনি বললেন কি, একজন ব্যক্তি অত্যন্ত অসুস্থ ছিল, তাহার সেবার জন্য তাহার চিকিৎসার জন্য আমরা কিছু ব্যবস্থা করেছিলাম, সেই জন্যই আমি আসতে পারিনি অনেক দেরিতে। তো এইভাবে তিনি সেবা করতেন। তারপরে যখন তিনি মঠে আসলেন, মঠে এসে প্রচুর ভাবে তিনি সেবা করেছেন। আপনারা শুনেছেন যে তিনি মায়াপুর ধামকে প্রকাশ করলেন, মায়াপুর এক সময় লুপ্ত হয়েছিল, ছিল প্রভুপাদ ছিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর তাহারা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সেখানে ব্যাপক ভাবে কোনো কিছু মঠ ইত্যাদি নির্মাণ হতে পারে নাই, মুসলমানদের অধিগ্রহণে জমিগুলি তাহাদের আয়ত্তের মধ্যেই ছিল। ছিল প্রভুপাদ এক সময় একদিন রাতারাতি চারদিক দিয়ে প্রাচীর ঘিরে দিলেন। মুসলমানরা বললো কি, বলে আপনারা কি করছেন, বলে আরে ভাই তোমাদের যাতে সুবিধা হয়, যাতে এখানে গরু ছাগল ভেড়া কেউ না আসে, কোনো কিছু না আসে, আর গাছগুলি যাতে সুরক্ষিত এই স্থানকে সুরক্ষা করবার জন্যই আমি ঘিরে দিচ্ছি। তখন তারা শুনে খুব খুশি এইভাবে ঘিরে দিলেন। একদিন রাতারাতি বড় বড় গাছ নিয়ে এসে লাগিয়ে দিয়েছেন, এইভাবে লাগিয়ে দিতে তারপরে সকালবেলা মুসলিমরা এসে দেখলো কি, বলে পারে এ তো সব দখল করে ফেলেছে। সেই সময় তারা থানায় খবর দিল, পুলিশ ইত্যাদি এসেছে। তো পরম গুরু মহারাজ তিনি বললেন, কই এ জায়গাটা আমাদের জায়গা, আপনারা দেখছেন এখানে কত বড় বড় গাছ লেগে আছে, কতদিন ধরে এটা ঘেরা হয়েছে, আমরা তো এখনো দখল করি নাই, পূর্বের থেকে আছে আমাদের সম্পত্তি, এরা এখন কোথার থেকে এসেছে এই নবাগত। তো এইভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন। তখন পুলিশরা সব মুসলমানদের ভাঙিয়ে দিল, তোমরা এখানে উল্টা সেটা বলতে আসছো, যাও এখান থেকে, মায়াপুরের জমি দখল করে সেই হলো চৈতন্য মঠ। এইভাবে প্রভুপাদের স্থান চৈতন্য মঠকে তিনি স্থাপন, আর সেখানে এখনো সেই কাঁঠাল গাছ আছে, আমরা প্রতি বছর দর্শন করি। জমির খাজানা দিত না মুসলমানরা, চাষবাস করে কোনো কিছু ভাগ দিত না, বহু সমস্ত লোক এইভাবে ঠকাইত। তো তিনি এখন কি করতেন, সবাইকে ডেকে নিয়ে আসতেন, বলে এখানে ডেকে আন, নিয়ে এসে কাঁঠাল তলায় টেবিলের তলায় মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে পিছনে আচ্ছা করে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে দিতেন, দু চার ঘাত যেমনি ধমাধম দিতেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে বাবু আমরা এখনই খাজানা নিয়ে আসছি, এখনই আমরা সবকিছু পুড়িয়ে দিচ্ছি, এই বলেই তাদেরকে শাসন করতেন। আর সবসময় ঘোড়ার পিঠে চড়তেন, সকলেই তাহাকে বিনোদ দা বলতেন। এইভাবে বিনোদ বাবু ছিলেন জমিদার বাড়ির ছেলে, আর জমিদারের মতো তিনি ঘুরতেন ফিরতেন। তো সকলেই জানে যে কেমন ধরনের সাধু, আর কেউ কিছু বুঝতে পারে নাই। আপনারা এখন এই শ্রবণ করলেন, পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ বললেন যে যখন পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ প্রথমে এসেছেন মঠে, আর এসেই দেখলেন যে একজন লম্বা চওড়া সন্ন্যাসী তাহাকে প্রণাম করছেন, উনি টেবিলের উপরে পা তুলে চেয়ারে বসে আছেন। অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে সেই দেখেই তিনি অবাক হয়ে গেলেন, কে এই? তখন তিনি পরিচয় নিলেন বিনোদ দা, অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাহারপরে প্রভুপাদের সেবা করবার পরেই তিনি নবদ্বীপে চলে আসেন। নবদ্বীপ কোলদ্বীপে স্থাপন করলেন, গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিকে স্থাপন করে তিনি সেইখান থেকে প্রচার প্রসার শুরু করেন। যে প্রভুপাদের পরবর্তী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা ইত্যাদি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তিনি একাধারে সর্বপ্রথম পরিক্রমা প্রারম্ভ করলেন। অপরদিকে গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির থেকে গৌড়ীয় পত্রিকা চালু করলেন। তারপরে তখন সেই সময়ে কোন পয়সা টাকা পয়সা ছিল না। একদিন কিছুই নাই কাছে, কোন একজন ব্যক্তি এসেছেন, একজন সাধু এসেছেন, গুরু ভাই একজন এসেছেন, এখন তাহা কি করে আদর সৎকার করবেন? সেই সময় কোনো কিছুই নাই। তিনি চিন্তা করছেন মনে মনে, এমন সময় একটি চড়ুই পাখি এসে একটা পোটলা ফেলে দিলেন যার মধ্যে ছোয়ানা পয়সা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখলেন যে একটা কিছু পড়ে গেছে ওখানে, একটা পাখি ফেলে দিল, কি জিনিস ওর মধ্যে? তাই খুলে দেখলেন যে ওর মধ্যে পয়সা আছে, ছোয়ানা পয়সা। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মনে মনে খুব প্রসন্ন হলেন আর সেই পয়সা নিয়ে একজন সেবককে পাঠালেন, যাও সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি কিনে আন। তখন মিষ্টি কিনে আনতে তাহাকে খাওয়াইলেন, আদর সৎকার করলেন। এরপরে সিঙ্গাপুর থেকে বর্মা থেকে মনি অর্ডার আসলে 100 টাকা। তারপরে ধীরে ধীরে তিনি প্রচার প্রসার করতে লাগলেন। সেই সময় অনেক কষ্টের মধ্য দিয়েও সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়ে তিনি কোনদিন বিন্দু মাত্র দুঃখ কষ্ট অনুভব করেন নাই, সর্বক্ষণ অতি উৎসাহে সেই প্রচার প্রসার করেছেন। আপনারা শুনলেন যে তিনি সহজিয়া সখী ভেটি স্মার্ত জাত গোসাই অতিবাড়ি চূড়াধারী গৌরাঙ্গ নাগরী যতগুলি অপসম্প্রদায় ছিল, সেই অপসম্প্রদায় গুলিকে তিনি 39 তো 39 অপসম্প্রদায় ব্যাখ্যা দিয়ে সবগুলিকে তিনি খণ্ডন মণ্ডন করেন। খণ্ডন করে বিশুদ্ধ ভক্তির প্রচার করলেন। বেদান্তের তাৎপর্য যে ভক্তি, তাহাই তিনি স্থাপন করে গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এবং ভক্তি বেদান্ত তাহা প্রকাশ করলেন। বেদান্তের তাৎপর্য কেবল কর্ম নয়, অথবা কেবল জ্ঞান নয়, কেবল ব্রহ্ম নয়। সেই সময়ে গৌড়ীয় মঠে একটি গালি ছিল, কেউ যদি কাউকে মায়াবাদী বলে গালি দেয় সব থেকে বড় তিরস্কার হতো, সব থেকে বড় গালি হতো। তো এইভাবে প্রভুপাদ পরমগুরু মহারাজ তিনি মায়াবাদকে খণ্ডন করেন, এমনকি তিনি মায়াবাদের জীবনী গ্রন্থ লিখলেন। শঙ্কর মতবাদের উৎপত্তি এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ, শূন্যবাদী রাবণ, তাহার থেকে এই যে বৌদ্ধবাদ এসেছে, আর অপরদিকে শ্রী শঙ্করাচার্য যে ব্রহ্মবাদ স্থাপন করলেন, তাহার মধ্য দিয়ে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ, যে শূন্যবাদ থিওরি যার মধ্যে কোন ঈশ্বর উপাসনার কথা, ভগবত উপাসনার কথা নাই। যতদিন সংসারে মায়াবাদ থাকবে ততদিন কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার হতে পারে না। সর্বপ্রথম মায়াবাদকে, ভোগবাদকে দূরে সরিয়ে তবেই বিশুদ্ধ ভক্তির পথে চলা যায়। সেই জন্য বেদান্তের তাৎপর্য ভক্তি, তাহাই তিনি স্থাপন করলেন আর সেই প্রকাশ করে জগতে এই সন্দেশ জানিয়ে গেলেন। কর্মকাণ্ড জ্ঞান কাণ্ড সকলে বিশেষ ভাণ্ড অমৃত বলিয়া দেওয়া খায়, নানা জনি ভ্রমণ করে কদরে যে ভক্ষণ করে তার জন্ম অধপ পাতে যায়। সেই কথা শ্রী রতন ঠাকুরের এই কথার আদর্শ তিনি স্থাপন করেন আর এইভাবে বেদান্তকে বেদান্তে তিনি প্রতিপাদন করেন। এই সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রাধা ভাব বিভাবিত কৃষ্ণের গৌরমর স্বরূপ সেই গৌরমূর্তি প্রকাশ করলেন। শ্রী বিগ্রহ সেবা এবং মন্ত্র উপাসনা সব কিছুর মধ্য দিয়ে ভাবে অভিব্যক্তি, মঙ্গল আরতি কীর্তন এই সবগুলির মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বেদান্তের তাৎপর্য ভাবে ভক্তিকে স্থাপন করলেন, অপরদিকে মহামাধুর্য পরিপূরিত কৃষ্ণ ভক্তি রসে প্রবাহ তিনি প্রকাশ করেন। এইভাবে যাহা অতুলনীয় অনুপম গুরু সেবা আদর্শ, তিনি প্রভুপাদকে দর্শন প্রভুপাদ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে হা প্রভুপাদ বলে বলতে পারতেন না, অযুত নেত্রে কাঁপতেন। সেই জন্য তিনি বলেছেন, গুরু পাদ পদ্মে যার রহে নিষ্ঠা ভক্তি, জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি। গুরু পাদ পদ্মে যদি এক নিষ্ঠা সুদৃঢ় নিষ্ঠা হোক, সমস্ত জগৎ কো ভি উদ্ধার কর সকতে। উনকা বচন হ্যায় কান কে দ্বারা আঁখো সে ভগবান কা দর্শন নহীঁ হোতা, কান সে হি দর্শন কে লাভ হোতা। গুরু বৈষ্ণবো সে সুনতে হি তভি দর্শন সম্ভব হ্যায়। ইস প্রকার বিশুদ্ধ ভক্তি রস কে প্রকাশক যোগি রূপানন্দ গুরুবর্গ শিল পরম গুরু মহারাজ রূপানন্দ বিচারধারা কো প্রকট করনে ওয়ালে আজ উনকে চরণো মে হম শ্রদ্ধা পুষ্পার্পণ সমর্পণ করতে
কাল সবেরে 4 বাজে ঘন্টি বাজেগি, সবা 4 সে লেকর 4:30 তক পুরা খতম কর দিয়া যায়, 4:45 তক 4:45 তক সব আরতি তারতি হো করকে ফির লোক বেঠ জায়েঙ্গে কীর্তন মে, আর 5:45 মেয়ে ইহা আউঙ্গা, আর 5:45 থেকে 7 তক কীর্তন পহলে আর তব কুছ প্রবচন, আর ইসকে বাদ মে কল যমুনা মে সংকল্প লেনে কে লিয়ে বিশ্রাম ঘাট মে সব লোক যায়েঙ্গে, আর ফির উহাঁ সে আ করকে 10 বাজে গুরুজি কে চরণ মে পুষ্পাঞ্জলি আরতি ইত্যাদি করেন, আর ফির দোপহর কা প্রসাদ হোগা সবি লোগোঁ কো, আর সব লোক করিব করিব বৃন্দাবন পৌঁছ যায়েঙ্গে। কল কা ইয়ে প্রোগ্রাম হ্যায়, আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়ে শুড বি ক্লিয়ার।
First of all, we'd like to welcome all the devotees who have arrived today. We are all very happy that you've come and given us an opportunity to honor
Gaurang
Sri Gurudev, assist Sri Gurudev to arrange so many things that our program will be successful. Only by Gurudev's mercy we are here. He is actually calling us. And he will, by his godless mercy, bring us to so many wonderful places where we can hear the Haikatam. So I would request all of you, tomorrow we are shifting to Vrindavan, Sunday morning are in Vrindavan. We want to know how all of you will find places. Please help us and register yourself properly. So far about 200 devotees have registered, but I think there are more than 500 devotees. We expect more than 600, between 600 to 700 devotees this year. So please register as soon as possible so that everything can be arranged nicely. In Vrindavan, we will also give opportunity that you can dispose temporarily of your valuables, your passports and tickets. Already we heard messages that the devotees have lost their expensive recorders. Yesterday one devotee as possible, slower or whatever. So whoever has found a higher river recording, a video recorder, please turn it into Shiva Paramahansa or myself, and we can look after that. A bag was stolen or missed the day before, a green backpack with money and medicines inside. Whatever is found, please turn it into us. Those of you who have difficulty with health, we request you please be very careful with your health. Don't drink any water except from bottled water. Also be careful what you eat. Don't eat everywhere, here and there, in shops or restaurants. We have prepared a very wonderful arrangement for prasadam. If you simply take the Mahaprasadam, which is served every day, I guarantee you that your health will be okay. Yes. One of us is advising who is drinking fruit juice, drink it at once when it is squeezed. Don't wait, put it in your room, it will turn into some poison. There will also be doctors amongst the devotees already. There will be two, three doctors available. One Russian devotee is a doctor. One American devotee is a doctor. They are authorized doctors.
Also Indian.
Also one Indian doctor. Don't go to doctors who are not authorized. Yeah? They have to know what they are doing. Otherwise, medicine will become opposite. We will announce it in Vrindavan once we all gather and start our program here. Shri Gurudev has just announced that tomorrow morning, 4 to 5, also to be assembled here, we will start our glorification of Nityananda Krishna Om Shri Bhakti Pratya Krishna Goswami Maharaj. Again, we will start Shri Gurudev himself will be here and glorify his own Gurudev. And also allow us to receive that nectar from his lotus mouth. After that, around 7 o'clock, late 7:30, all bow to Vishram Ghat on the other side for Sankalpa. Bow for Aparika Bodhi to be successful. After our Sankalpa at Vishram Ghat, we will again assemble here by 10 o'clock, and we'll offer Pushpanjali Aarti to Param Gurudev, and then after that, more glorification till we all observe the Maha Mahotsava Maha Prasadam feast, which will be prepared by Bhutipal Premarada Prabhu and his team. We would like to mention that we are extremely thankful and appreciative of the immense surrender that Bhutipal Premarada Prabhu every year displays. He is looking after all the arrangements and where we are going. He is managing behind the curtain. We don't see him, but we know that he is organizing so much and he is so surrendered to the desire of Shri Gurudev to raise his
any car, they will show it and then enter in bath. Are you giving any car?
Yes, we are. Cars are given as soon as we are.
They should enlist their name, register their name, all. And they should be given car, identity card.
Yeah, everything.
And then, otherwise, no will be entered.
Buses and
buses.
So cards, identity cards will be given in Vrindavan. And by that you can enter the bus, you can sit down for Mahaprasada without any fear that anyone may come and tell you to wait for the end if there's any remnant.
Will they come next morning and then we all go to
Mexico? যারা এখনো পর্যন্ত
আপনাদের নাম রেজিস্ট্রি করেননি
আজ আলোচিত পরে অথবা কাল সকালে আপনার নাম রেজিস্টার করে টিকিট সংগ্রহ করে নেবেন। বৃন্দাবনে যাব, যারা এখনো নাম রেজিস্টার টিকিট দেননি তাদের জন্য আমাদের ব্যবস্থা করতে অসুবিধা হবে। এই জন্য আমি আপনাদের নিবেদন করছি,